पढ़ रहे थे 18 फरवरी 94 की अव्यक्तवाणी ग्रुप नंबर 2। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा साथ रहने वाले व कभी कभी साथ रहने वाले क्या समझते हो? जब बाप का साथ छूटता है तो और कोई साथी बनते हैं? माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे, बहुत रहे हैं। और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? संगम युग है ना, और संगम युग है भी सबसे छोटा युग। तो क्या करना चाहिए? सदा होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे? किसने कहा नहीं? तो इसका स्लोगन क्या है? फिर किसी ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। यह याद रहता है, समय का भी महत्व याद रहे, और किसका महत्व याद रहे? दो चीज, साथ का और स्वयं का भी महत्व याद रहे। दोनों महत्व वाले है ना। इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को ही क्या कहा जाता है?
अमूल्य,
मूल्यवान। कल भी कहा था ना मामा ने, ये
दुर्लभ,
बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्य गाया जाता है, हीरे का मूल्य होता है। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं है। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन क्या गया? अनेक वर्ष, और बहुत कुछ गया। ऐसी स्मृति रहती है, सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अब है। अगर सीजन को महत्व नहीं देते तो सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो इस समय का महत्व है जमा करने का समय। अगर राज्य अधिकारी भी बनते हो तो भी अभी के जमा के हिसाब से, और पूज्य भी बनते हो तो इस समय के जमा के हिसाब से। एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करना है। ये याद रहता है या कभी कभी? सम टाइम है। तो ये सम टाइम शब्द कब खत्म करेंगे? समाप्ति समारोह कब मनाएंगे? रावण को भी मारने के बाद जलाकर खत्म कर देते हैं। तो अभी मरा है, जलाया नहीं है, अच्छा है। ये वैरायटी ग्रुप है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं, उसी अमूल्य रत्न की दृष्टि से देखते हैं। है ना अमूल्य रत्न? कम भाग्य नहीं है जो उठते उठ भगवान के बन गए। तो खुश रहो और खुशी बांटते चलो। भरपूर है ना कि थोड़ी थोड़ा कम है? जो फूल होता है वह फेल नहीं होता, तो विजय है ना। अच्छा, तो ये था दूसरा ग्रुप। क्या कहा पापा ने? सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा साथ रहने वाले व कभी कभी साथ रहने वाले क्या समझते हो? जब बाप का साथ छूटता है तो कौन कौन साथी बनता है? माया अर्थात विकार अर्थात कमजोरी अर्थात और कौन साथी बनते है? बाप का साथ छूटा तो मनुष्य, व्यक्ति, वैभव, पदार्थ, वस्तु, विषय, इच्छाएं, अलबेलापन। जब बाप का साथ छूटता है तो और कौन साथी बनते हैं? माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे, बहुत रहे हैं। और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? कितने समय का है? पूरा संगम युग, हम तो बीच में आए हैं संगम युग के, जब से ब्राह्मण बने तब से। कितना समय चलता है? तो बाबा कहते संगम युग है ना, और संगम युग है भी सबसे छोटा युग। तो क्या करना चाहिए? सदा होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी सात का अनुभव नहीं कर सकते। सारे कल्प में और क्या क्या नहीं कर सकते माता जी, जो केवल अभी किया जा सकता है। पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, पढ़ाने वाला अब आया है, मिलन नहीं हो सकता है, और कमाई नहीं हो सकती। कमाई का तो समय ही अभी है, पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। हर प्रकार की वरदान और किसी समय नहीं मिल सकता है, अभी मिल सकता है। अतीन्द्रिय सुख और किसी युग में नहीं है, केवल अब है। तो अतीन्द्रिय सुख, पढ़ाई, कमाई, अनुभव, जमा का खाता और
ज्ञान की झूला, प्रेम का झूला, आनंद का,
ऐसा झूला और कहीं नहीं है। ज्ञान का झूला, आनंद का झूला, प्रेम का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला, सुख का झूला, ब्राह्मण परिवार, और कभी नहीं मिल सकता, अभी मिलता है केवल। और चारों धाम, मधुबन, मधुबन और कभी नहीं मिलता अभी। चढ़ती कला,
पढ़ाई, कमाई, चढ़ाई,
पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, भगवान को कभी, भगवान का दीदार केवल अब कर सकते हो। भगवान की लीला है, लीला धाम में लीला करने आया है, नाटकशाला है वो। और वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे देखता है, वो कैसे कर्म करता है, क्या उसकी भावना है, क्या उसकी फीलिंग्स है, कब उसको हर्ष होता है, कब उसको तरस आता है, कब उसको रहम आता है, विश्व कल्याण का कार्य वो कैसे कर रहा है, अद्भुत। कभी हम उसके मददगार, भागीदार, खुदाई खिदमतगार बनने का समय अब है, और कोई नहीं। उसको बाप के रूप में, उसको माँ के रूप में, उसको बहन के रूप में, उसको भाई के रूप में, उसको साजन के रूप में, उसको दोस्त के रूप में, उसे बंधु के रूप में, हर रूप में उसे देखा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है, जो केवल अब होता है। और वर्षे पाने, वर्षा पाने का समय, विरासत केवल अभी मिलती है और किसी युग में नहीं। और सर्व का फाउंडेशन लगाने का, न्यू जनरेशन, स्वर्ग की जनरेशन लगाने का फाउंडेशन अब है। सदर्शन चक्र अभी बन सकते हैं, चारों युगों की जो बाबा के, अच्छा भगवान को गीत गाते सुनना अभी हो सकता है। सारे कल तो हमने गीत गाए, अभी वो गीत गा रहा है, ऑल टाइम फेवरेट,
त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी का
टाइटल, एक ही जगह बैठ के विश्व के महाराजा। और सेल्फ रियलाइजेशन, जो चक्र के बाहर है उसके साथ, जो चक्र के बाहर है उसके साथ, वो भी एक ही बार। चक्र के जो बाहर है, कल मम्मा ने कहा, वो आकर ही सुना सकता है इस चक्र में क्या होता है। जो चक्र में है वो कभी नहीं बता सकते, जो चक्र के बाहर है वही इस चक्र का ज्ञान देता है। जो डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, इस खेल को जो देखने वाला है। और किसी ने अभी एक अच्छी बात, रियलाइजेशन, कल दादी की 36 पॉइंट्स में एक पॉइंट, मम्मा की पॉइंट ये है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन तुम अभी करते हो, और रियलाइजेशन से परिवर्तन होता है। रियलाइजेशन मिलती है मुरली से, और माया को जान सकते, पहचान सकते, आज मुरली में है, माया को पहचानना, उसके रूप को केवल अब। माया को पहचानने से पहले उसका ज्ञान, माया है क्या। अब तक तो माया को कुछ और ही समझा, किसी ने नाम रूप को माया कहा, किसी ने धन को माया कहा, किसी ने कामिनी कांचन को माया कहा, किसी ने प्रकृति को माया कहा, माया को किसी ने भगवान की ही शक्ति को माया कहा। भक्ति में माया तो परमात्मा की महामाया, मैं अपनी माया माया महा माया के आधार से रूप धारण करता हूँ।
योग माया।
हाँ योग माया वही भगवान। मुरली सुनना केवल अब है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और किसी युग में परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता है। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज यहाँ खोल रखे है सारे। ऐसा रहस्य उद्घाटन कभी नहीं हुआ है। ऐसे भेद अगम निगम के कभी नहीं खुले है। छूटने का समय इस भवसागर से अब है। मन बुद्धि की सूक्ष्म यात्रा, अब तक तो पैरों की यात्रा करते रहे, मन बुद्धि की यात्रा करने का समय अब है। पुण्य का खाता, पुण्य कर्म करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का, दुआएं जमा करने का समय अब है। आत्मिक दृष्टि की साधना करने का समय अब है। आत्मा को करंट देने का समय अब है। परमात्मा से करंट लेने का समय अब है। अभी अभी दाता बनने का समय है, मास्टर दाता बनने का समय अब है, महादानी बनने का समय अब है, वरदानी बनने का समय अब है, महान कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उच्चतम कर्म, सजाव से छूटने का समय, स्वच्छ कर्म करने का समय। कल मम्मा ने कहा ना, इस समय तुम ना पंडित विद्वान नहीं बनते हो, परंतु तुम अपने कर्म को ही स्वच्छ कर देते हो। तुम्हारी उनकी है हाथों की सफाई, तुम्हारी है बुद्धि की सफाई। तुम अपनी बुद्धि की सफाई से सारी करामात करते हो। तो छोटा सा युग तो क्या करना चाहिए, सदा होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे, भगवान के साथ का अनुभव। उसके लिए जिसका साथ चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए, वो कौन है? उसका ज्ञान ही नहीं था तो साथ का अनुभव कैसे करेंगे? किसी ने कहा नहीं तो इसका स्लोगन क्या है, अभी नहीं तो कब नहीं। किस लिए कहा है ये? साथ का अनुभव करने के लिए। केवल सुबह अमृत वेले नहीं, निरंतर सारे दिन भर वो साथ है, हम अकेले नहीं है, ये याद रहता है, ये याद रहता है। घोड़े चार प्रकार के गिने हुए हैं। घोड़े जो होते हैं ना, वो चार प्रकार के घोड़े होते हैं। पहला घोड़ा है, जब तक उसको कितना भी चाबुक मारो फिर भी नहीं चलता, या थोड़ा मर मर के थोड़ा चलेगा फिर रुक जाएगा, ये पहला घोड़ा है। दूसरा घोड़ा है, एक ही चाबुक लगाओ, जब चाबुक लगाओगे तो ही चलता है, नहीं तो नहीं। जोर से उसको एक कोड़े बरसाओ उसके ऊपर तो चलेगा, चलेगा फिर थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, पर पहला तो चलता ही नहीं, चला भी तो बहुत ही मुश्किल से, कितना भी कोड़े मारो। दूसरा घोड़ा जो है वो एक बार मारो तो चलता है, नहीं तो नहीं, उसको चाहिए। फिर तीसरे प्रकार का एक घोड़ा होता है, वो कैसा होगा? बरबर आवाज से, केवल चटकार कहते हैं उसको, वो जो आवाज होती है ना चाबुक की, वो आवाज किया कि बस चल पड़ा, उसको मारने की आवश्यकता नहीं, केवल आवाज से। सर्वश्रेष्ठ घोड़ा और एक होता है चौथे नंबर का, वो कौन सा होता है नागेश भाई? कौन सा इशारा? वो उसको तो एक तीसरे नंबर का तो उसको आवाज कर दिया तो वाइब्रेशन हाँ लगाम की बात चल रही है। अच्छा बैठ कहा जाएगा चौथा जो होता है सर्वोत्तम घोड़ा, केवल चाबुक की छाया, केवल छाया जो होती है उसको, छाया दिखी उसको कि चालू हो जाता है। चाबुक है श्रीमत, श्रीमत है चाबुक। तो कोई कोई ऐसे है जो पहले वाले, कितना भी मारो कितना भी मारो कितना भी मारो फिर भी फॉलो नहीं करते, फिर भी हाँ अच्छा लड़ोल है अपनी स्थिति में, अपनी मनमत और अपनी परमत की अवस्था में, स्थित प्रज्ञ योगी के रूप में है भोगी सीता प्रक के भोगी के रूप में, कितना भी मारो कितना भी मारो कितना भी मारो चलने का नाम नहीं। दूसरे जो है वो अच्छे पुरुषार्थी है, फिर भी एक चाबुक लगा कि चला, फिर रुक गया, फिर ये पूछा है ना, यह याद रहता है यहाँ चाबुक चाहिए बीच बीच में, जो एक लगा फिर याद आया हाँ ऐसा है तो चले 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 फिर रुक गए। मैंने देखा यहाँ पे अनादरा में कुछ कुछ घोड़े, सब नहीं, उनको आंखों में ऐसा लगाया हुआ है, आंखों पे पट्टी। तो मैंने उसको पूछा अश्वारोहक जो चलाने वाला है कि ये पट्टी क्यों लगाते हैं, तो क्या उत्तर देखा, ताकि वो सीधा ही देखते रहा, क्योंकि घोड़े आपस में झगड़ते हैं, अगर वो दूसरे को देखता है तो झगड़ता है, इसके लिए पट्टी लगा रखी है आंखों। हाँ फोकस्ड रहना है, मतलब वही वो एक ही जगह, मतलब वो देखे ही नहीं दूसरे को अपने साथी को, क्योंकि देखता है तो झगड़ा करता है, झगड़ा होता है, उनका झगड़ा छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। इसके लिए कुछ कुछ को है, सबको नहीं है वहां पर, तो ये ऐसे लगा के रखे दो पैड आईपैड, तो हमें भी कुछ ऐसे आईपैड लगाने चाहिए ताकि कहीं और किसी को देखे ही नहीं। कल कहा ना, मंडे था ना, संडे था, परसों था ना, एक बाप एक नंबर वन को देखना और एक नंबर वन को फॉलो करना, फरिश्ता सो देवता मंत्र याद रखना, तो बस एक को देखना और एक को फॉलो करना, इधर से आईपैड लगा के रखना चाहिए तारी ट्रैक पर नजर रहे। तो पहला है जिसको कितना भी मारो नहीं चलता है, दूसरा जो है उसको एक चाबुक लगाओ कि चलना चालू करता है, तीसरा जो है वो केवल उधर मारा ही नहीं है, इधर ही केवल आवाज से, तो ऐसी कुछ आत्माएं हैं कि केवल बैठे क्लास में सुना और सुनते ही धारण, बस तुरंत धारण कर लिया फास्ट। और चौथे जो है वो तो एकदम बस प्रेरणा से ही कहो उसको, केवल छाया, केवल इतना ही, अभी भगवान सुनाया नहीं है कुछ, भगवान तो बैठा, केवल भगवान सुनाने वाला है, यही से धारणा हो गई, अभी तो सुनाया भी नहीं है, पर पहले ही मन ने स्वीकार कर लिया वो सर्वोत्तम घोड़े है जो केवल आवाज से धारण चलना चालू कर देते, पुरुषार्थ करना चालू कर देते, उन्हें और कोई चीज की जरूरत नहीं। बुद्ध के पास एक शिष्य था जिसका नाम था विमल कीर्ति, वो जो शिष्य था वो श्रावक था, साधु नहीं था, वो श्रावक अर्थात श्रवण करने वाला, केवल केवल बैठ सकेगा सुनेगा, कोई उसने कोई संन्यास नहीं लिया, ना ही वो दीक्षित हुआ बस, परंतु बुद्ध फिर भी अपने जो साधु शिष्य थे उनको उसके पास भेजता था, जाओ उससे सीख के आओ, उनको बड़ा अखरता था, उनके अहंकार को चोट लगती थी ना कि हम रहते यहाँ और हमको भेज रहा है उसके पास, तो मतलब उनको बड़ा अंदर से दुख होता था इस बात का कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो केवल श्रावक है, हम तो सब कुछ करने वाले, बुद्ध जो कुछ कह रहा है वो हम करते हैं, वो तो करता मतलब वो केवल सुनता है, ऐसी उनकी मान्यता थी जो भिक्षु थे। तो एक भिक्षु एक बार वो विमल कीर्ति बीमार पड़ा, तो वो एक शिष्य उसके पास गया हालचाल पूछने के लिए केवल, और वो कहता है कि मैं हालचाल पूछने गया और मुसीबत में पड़ गया, एक प्रश्न क्या पूछा उससे वो तो ऐसा चालू हो गया कि रुकने का नाम ही नहीं, मैंने पूछा उससे कि तबीयत कैसी है, तो उसने पूरा आत्मज्ञान सुनाना चालू कर दिया। किसके बारे में पूछ रहे हो, आत्मा के बारे में देह के बारे में, आत्मा तो सदा अजर अमर अविनाशी है, वो पूरा ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान सुनाना चाहता, तब उसको पता चला कि भाई क्यों इसके पास भेजा जाता है सबको। तो वो कैसा, वो फिर भी उसको पूछता है कि भाई ऐसा क्यों, तुम तो केवल श्रावक हो सुनने वाले और हम तो साधु है, फिर भी हमको तुम्हारे पास क्यों भेजते, और तुमको कभी नहीं कहते कि किसी साधु के पास जाओ और सीखो। तो वो कहता है कि मैं केवल सुनता हूं पर सुनने से तुरंत धारण कर लेता हूं, वो ये बात कहता है, वो उस चौथे घोड़े की तरह है, जो बाबा कह रहा है वो तुरंत धारण कर लेना, फिर उसका विस्तार और कुछ नहीं चाहिए उसको, इतना निश्चय अंदर से है। वो कहता है कि मैं जो भी उसने कहा है अब तक केवल मैंने सुना है बस, पर वो सुना हुआ मेरे इतने अंदर समाया गया है कि वो जैसे वो स्वरूप हो गया हूं मैं उसका, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुद्धि को पहले इतना स्वच्छ कर रखा था कि जो जो सुनाया गया वो उसमें ऐसा समा गया कि जीवन वो प्रैक्टिकल में आ गया, केवल वो थियरी नहीं रहा। फिर तो वो भगवान जो कह रहा है वो भी चित्त में, मनो मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में ऐसा समा जाए कि जैसे उसके अतिरिक्त तो और कुछ था ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये याद रहता है, चाबुक लगाया है यहाँ पर, क्योंकि पता है बाबा को वो चौथे नंबर वाले घोड़े बहुत ही कम है, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट नंबर के तो बहुत है, दो नंबर के मैक्सिमम है जिनको बीच बीच में लगता है चाबुक। समय का भी महत्व याद रहे और स्वयं का भी महत्व याद रहे, मैं कौन और समय कौन सा चल रहा है, ये दो चीजें याद रहनी चाहिए। कौन सा समय है ये अपने आप को बार बार बताना। दोनों महत्व वाले हैं ना, इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को हीरे तुल्य कहा जाता है। ये जो समय है हीरे तुल्य समय, अति महत्वपूर्ण समय है। ये जो जीवन है हीरे तुल्य जीवन है। इस जीवन को इसके लिए ऐसे किसी कार्य में बर्बाद नहीं करना है जो उसकी श्रीमत के विरुद्ध हो, श्रीमत ही जीवन हो जाए। तो समय, हीरे का मूल्य कितना होता है, तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं, भगवान का जो साथ प्राप्त हुआ है उसको छोड़ना नहीं। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। ये चौथा आयाम है, हर चीज के तीन आयाम होते हैं, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। आत्मा में ये आयाम नहीं है, चेतना का एक चौथा आयाम होता है, वो टाइम, समय। हर चीज, हर वस्तु संसार में जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तीन आयाम, थ्री डायमेंशंस। पर जो चेतना है, जो आत्मा है, उसका एक चौथा आयाम होता है जिसे टाइम कहा जाता है। आत्मा चौथे आयाम के स्तर पर कार्य करती है, समय के स्तर पर। एक है टाइम, एक है स्पेस, समय और क्षेत्र। संसार ने कहा है समय अलग, क्षेत्र अलग, पर बहुत सारे संशोधन हुए, तब आइंस्टाइन आया और आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ये दोनों एक ही है, समय और क्षेत्र। स्पेशियो टाइम नाम का नया शब्द उसने तैयार किया, स्पेशियो टाइम, स्पेस और टाइम। इस टाइम को समझना है, ये टाइम क्या चीज है, ये काल क्या चीज है, ये बहुत ही घुई है, इसमें फिजिक्स आता है सब कुछ। समय कार्य कैसा करता है, हर समय हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग रूप धारण करता है, सुबह योगी है, दोपहर में कुछ और है, रात को भोगी है, फिर योगी बनता है, फिर भोगी, फिर योगी, फिर भी योगी, फिर कभी प्रयोगी, अलग 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 रूप। ये समय किस तरह कार्य करता है, समय को, समय की पहचान, पहले तो ये समय कौन सा चल रहा है, इस समय क्या क्या करना है, और हम समय के साथ क्या क्या हो रहे हैं, हमारे ऊपर समय का क्या प्रभाव है, सुबह के समय का क्या प्रभाव है, दोपहर के समय का क्या प्रभाव है, संध्या के समय का क्या प्रभाव है, और रात के समय का क्या प्रभाव है। हमारी स्थिति, चेतना का स्तर सर्वोच्च कब रहता है, उसका संशोधन करना, उसके ऊपर रिसर्च करना। वो कौन सा समय है जो ज्ञान को ढक देता है, वो कौन सा समय है जो ज्ञान को उजागर कर देता है, वो कौन सा समय है जिसमें हम आत्म अभिमानी बहुत अधिक बन सकते हैं, वो कौन सा समय है जो हमारी आत्माभिमानी स्थिति को ढक देता है। समय पर संशोधन करना है। समय क्या है, काल क्या है, व्हाट इज टाइम, और आवर एम इज टू गो बियॉन्ड टाइम। हमें कालातीत बनना है, काल से भी परे चले जाना है, वो कैसे है। इसमें कहा गया है, तीन बातें कही गई है, एक होता है सुख, एक होता है दुख, एक है आनंद। दुख जो है वो समय को लंबा कर देता है, सुख जो है वो समय को
छोटा
कर देता है, छोटा कर देता है। और आनंद क्या करता है समय के साथ, वो चिंतन का विषय है। सबसे पहले लेंगे दुख। दुख समय को क्या कर देता है। पेशेंट को पूछो, हॉस्पिटल में खाट पर पड़ा हुआ है बहुत ही दर्द और पीड़ा के साथ, रात होती है तो पता नहीं सूरज कब निकलेगा, इंतजार ही करते रहता है, घड़ी की तरफ देखते रहता है, पता नहीं कब न मालूम कब सूरज हो गया और कब ये दर्द से मैं निजात पाऊंगा। रात भर दर्द दर्द और दर्द। दुख समय को खींचता है, लंबा कर देता है, इतना लंबा करता है कि एक एक पल एक एक क्षण पीड़ा सा महसूस होता है, एक लंबे युग सा महसूस होता है। तो समय दुख को बढ़ा देता है। किसी से वियोग हो गया, एक प्रेमी और एक प्रियसी अलग हो गए तो कितना पीड़ा होती है उनको। सुख क्या करता है, समय को कम कर देता है। जीवन में हमारे सुख के दिन अगर हम गिने तो कितने कम है, गिनती के ही है, ऐसे कहेंगे संसार के लोग। बस अभी अभी मिले, सुख मिला और दूर हो गए, फिर दुख। आनंद क्या करता है, कालातीत बना देता है, समय से परे ले जाता है। तो हमें ना सुख ना दुख, उन दोनों से भी परे, कालातीत वो होता है अशरीरी अवस्था में। इटर्निटी, बियॉन्ड इटर्निटी, या इटर्निटी जो है वो इटर्निटी ला देता है, वो भी हो सकता है, या इटर्निटी से तरफ ले चलता है। तो संसार की जो वस्तु है दुख, वो समय को छोटा बड़ा कर देती है, या संसार की चीजों से जो दुख सुख मिलता है वो हमको लगता है समय छोटा हो गया, परंतु हमें जाना है कालातीत, बियॉन्ड टाइम, फोर्थ डायमेंशन से भी परे निकल जाना है। वो होगा केवल अशरीरी अवस्था में, वो होगा अध्यात्म के मार्ग में, बाकी जो होता है वो संसार के सुख दुखों में होता है। तो समय का चिंतन करना है, समय किस तरह कार्य करता है, समय के क्या क्या आयाम है, समय के भी आयाम, अस्तित्व का आयाम समय है। द डायमेंशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टाइम, समय। फिर दूसरी बातें हैं समय के बारे में, समय कहाँ हमारा व्यर्थ जा रहा है और समय को कैसे समर्थ बनाया जाए, ये सब भी समय के लिए सारा चिंतन है। नींद में समय का पता नहीं चलता है। वो भी संभव तो कालातीत अवस्था ही है एक रीति से। नींद क्या है, नींद और योग बहुत ही नजदीक है दोनों। नींद ऐसी चीज है लगभग 40 नहीं कितने हैं वो 40,000 लोगों पर संशोधन चल रहा है नींद के ऊपर, कि नींद में आदमी को होता क्या है। नींद के ऊपर इतना सारे रिसर्च चल रहे हैं आज, कई लोगों को उसमें लिया गया है, सैंपल स्टडी जिसको कहते हैं, वो सैंपल जो लिया गया है कई सारे, और कम से कम 10 से 15 ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो केवल नींद पर काम करती है, कि नींद में आदमी को होता क्या है, कहां जाता है वो, ये स्वप्न क्या है, नींद क्या है, क्या हो रहा है वहां पर, केवल नींद के बारे में चिंता। नींद थेरेपी तो नहीं है। नींद पर रिसर्च है, स्लीप स्टडी। तो ये जो नींद है और योग है बड़ा ही नजदीक नजदीक है क्या। हाँ वो तो अलग बात है, कमाई होना नहीं होना अंतर की बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है फिजिक्स, या कहेंगे क्या कहेंगे उसको, साइंस की, साइंस ऑफ स्टडी, साइंस ऑफ स्लीप एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। कॉन्शियस स्लीप क्या कहेंगे मानस, कॉन्शियस स्लीप इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस मेडिटेशन है वो। मेडिटेशन की अवस्था तो है परंतु अनकॉन्शियस है, आत्मा अचेतन है, अचेतन अवस्था में। अभी जो योग जो है वो कॉन्शियस, इट्स अ कॉन्शियस स्लीप, जिसमें हम भले सोए तो है परंतु फुल्ली जागृत है, अपने स्वरूप में जागृत है, आत्मिक स्थिति में स्थित है, वो है मेडिटेशन। अंतर बहुत कम है, एक मूर्छा की अवस्था, एक अमूर्छा की अवस्था है। एक में हम मूर्छित है नींद में, इसमें अमूर्छित है, संपूर्ण जागृत है, संपूर्ण चेतन अवस्था में, सजग सुजाग। सेकंड गया, लेकिन सेकंड नहीं बहुत कुछ गया। देखो कितना बाबा सेकंड्स में बात करता है, सेकंड तो अभी बोलते बोलते ही गया, अभी वाक्य भी पूरा नहीं हुआ तो सेकंड गया। बाबा कहते सेकंड गया सब कुछ गया, एक सेकंड इधर कम तो उधर, एक सेकंड संगम युग का कई सालों के बराबर है। कैसे समझे इस वाक्य को? ये ऐसे जोक में कह रहा है, मजाक में कह रहा है, या डज ही मीन इट? वो सही में कर रहा है, वो सही में कर रहा है सब। मतलब क्या कह रहा है वो, कैसे हो सकता है? ये सेकंड की बातें चल रही हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में राजाई, सेकंड में आश्चर्य व्यवस्था, सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, सेकंड में ये कर दो, सेकंड में वो कर दो। अरे सेकंड, मिनट बोला तो भी चलेगा, मान सकते हैं, सेकंड की बातें चल रही है। मतलब किस आयाम में बात कर रहा है वो, कौन से डायमेंशन पे उसका माइंड काम कर रहा है? बस टाइम तो सेकंड ही है ना, 5000 भेंट की वर्ष में भी है, परंतु सेकंड तो गया, अभी बोलते बोलते ही गया। तो कहते हैं बाबा कि अगर सेकंड गया तो बहुत कुछ गया। इस वाक्य को कैसे समझे? हमने नहीं समझाया उसे, इसके लिए कहता है मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, यहां बैठने वालों में भी थोड़े ही है जो मुझे जानते हैं, तो नहीं समझ सकते उसको। तो ऐसी स्मृति रहती है। कौन सी स्मृति की बातें चल रही है, वो बोल क्या रहा है, ये किस स्टेज पर बैठ के, कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठकर स्पीकर बोल रहा है, और हम कहां, ऑडियंस कहां बैठी है? क्या उसके लेवल को, उसकी बातों को, ये कुछ हवा में तो नहीं चल रहा है सब, जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो क्या क्या कह रहा है ये, कौन सा तूफान है, कौन सा सुनामी है? सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अब है, किस प्रारब्ध की बात चल रही है? कोई कह रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बस ज्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई है ऐसा, वो ऊपर से बोल रहा है, आवाज थोड़ी पड़ रही है कानों में, और कुछ कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ कुछ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, थोड़ा देह से डिटैच भी हो रहे है, पर बातें क्या चल रही है? कौन सा साथ, कौन सी प्रालब, कौन सा समय और कौन सा सेकंड? अद्भुत सब कुछ, सारे कल्प के प्रारब्ध जमा करने का समय। अगर सीजन पर सीजन को महत्व नहीं देंगे तो सदा के लिए वंचित रह जाएंगे। किससे, किससे वंचित? कौन सा भाग्य और कौन सा आनंद? ऐसे सारे प्रश्न स्वयं से जितना ज्यादा पूछते रहेंगे तो थोड़ा चिंतन चलेगा, नहीं तो कहाँ चिंतन चल रहा है। मुरलिया चल रही है और चल रही है और चल रही है, बस हम क्या हो रहा है पता ही नहीं, वो अपने स्थान पर मुरलिया चालू है, हम अपने स्थान पर
जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं पता नहीं। हाँ,
वो भी चल रहे हैं। हमारे पास है कुछ लोग ऐसे डॉक्टर से जो पहले कुमार थे तब ज्ञान में थे, अभी उनकी उनकी शादी और बच्चे हो गए, कहते बच्चे भी बाबा के ही बच्चे हैं। ठीक है, पहले कुमार का भी अनुभव है अभी, और मुरली वगैरह कभी नहीं सुनते, पर कहते बाबा का ही तो सब कुछ है, उनको ज्ञान सुनाना बड़ा मुश्किल है, बोलता सब कुछ बाबा ही चला रहा है हमारा, ये हमारे बच्चे भी बाबा के ही है। अभी क्या कहें, माउंट में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कहते हैं कि आते हैं ओपीडी में, हाँ वो उस दिन एक क्रिश्चियन एक नन है इधर जो 1948 में यहाँ आई थी माउंट आबू में, अभी भी इधर ही रहती है, क्रिश्चियन नन, वो कहती है मम्मा तो मेरी फ्रेंड थी, मैं तो मम्मा के साथ खेलती थी। कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कहते हैं ये जो है ना बाबा, ये इनको हमने देखा है, बाबा के हाथ से टोली खाई है माउंट के कितने ही लोग, पर कभी वो टचिंग नहीं हुई, बस जो तभी थे तब अभी भी वही है, उससे जो अच्छा वो है जो दूर दूर से यहाँ आ गए, वो है ही नहीं इस कैटेगरी में, रेस में ही नहीं है वो। रेस में ही नहीं है, ये तो रेस वाले है, वाइल्ड जंगली गोटे, गधे या खच्चर। तो सीजन पर सीजन को महत्व देंगे तो सदा के लिए नहीं देंगे तो वंचित रहेंगे। तो इस समय का महत्व है, जमा करने का समय। अगर राज्य अधिकारी भी बनते हो तो भी अभी के जमा के हिसाब से, और पूज्य भी बनते हो तो इस समय के जमा के कुछ भी बनना है सब कुछ। ये भी कितनी गुह्य बात है, क्या इसको इंटेलेक्ट अंतर्मन अंतर चेतना अर्ध चेतन मन स्वीकार कर रहा है कि जो भी हम आगे बनने वाले हैं वो अब के आधार से बनने वाले हैं। एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करना है, ये याद रहता है या कभी कभी समटाइम है या ये सम, तो ये समटाइम शब्द कब खत्म करेंगे, समाप्ति समारोह कब मनाएंगे। रावण को भी मारने के बाद जलाकर खत्म कर देते हैं, तो अभी मारा है जलाया नहीं है, अच्छा है। बात चेंज यहाँ से, अच्छा है सब भी, फिर भी अच्छा है। ये वैरायटी ग्रुप है, बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं, बाप दादा एक एक रत्न के वैल्यू को जानते हो जानते हैं, उसी अमूल्य रत्न की दृष्टि से देखते हैं, है ना अमूल्य रत्न। एक तरफ तो ये ऐसी चीजें कहता है, दूसरी तरफ तुरंत तारीफ भी करता है, फिर तुम ऐसे हो तुम वैसे हो वैसे हो, फिर कहता है तुम्हें ये याद है ये याद नहीं है, दोनों चीजें। कम भाग्य नहीं है जो उचते उच भगवान के बन गए। हाँ फिर ये चालू करते हैं, ये किसकी तारीफ कर रहा है वो, अपनी या हमारी। कम भाग्य नहीं है जो उचते उच भगवान के बन गए, इस वाक्य में किसकी स्तुति है, दोनों की समाई हुई है, ज्यादा किसकी है उसकी तो खुश रहो, खुश रहो, नहीं रहते होंगे इसके लिए बोल रहे हैं ऐसा, और खुशी बांटते चलो। बांटने में तो बहुत ज्यादा कंजूस है, भरपूर है ना कि थोड़ा कम है, भरपूर संपन्न मालामाल कैसे बने, जो फुल होता है वह फेल नहीं होता। गुजरात वालों ने हॉल फुल कर दिया, अभी स्वयं को फुल करो, संडे की मुरली में था ना, संख्या तो बहुत बढ़ा दी, अभी स्वयं को फुल करो, भरपूर करो, संपन्न करो, मालामाल करो, भर दो तो विजयी है ना, तो विजयी है ना। अच्छा तो आज समय का चिंतन करना, इस संगम युग का चिंतन करना, समय का क्या आयाम है, कौन कौन से आयाम है, क्या डायमेंशन है, समय का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका चिंतन करना, और सदा साथ कैसे उसका अनुभव सदा सदा याद रहे। वो भूल जाता है, वो साथ ही भूल जाता है कि वो भी है। ये सारी बातों का चिंतन करना, और जो मुरली चलेगी उसमें भी संगम युग के बारे में कहा है आज, शुरुआती वहां से शायद महावाक्य, तो उसका भी चिंतन करना। अच्छा ओम शांति।